गाथा में आप सुन रहे हैं कोजंक वोब्रिश की लिखी कहानी एनकाउंटर। लीजिए सुनिए इस कहानी का पहला भाग। वो खूबसूरत लड़की जनरल स्टोर में दाखिल हुई। उसने एक लंबा सा पैकेट काउंटर पर रखा और दुकानदार के ध्यान देने का इंतजार करने लगी। दुकान के पास से गुजरने वाले एक राहगीर ने सर मोड़कर लड़की की तरफ देखा। उसके देखने का अंदाज भी सरसरी था और उसकी पर्सनैलिटी भी आम सी ही थी। लड़की बेहद खूबसूरत और पुरकशिश थी। वो शक्लो सूरत से एक कम उम्र लड़की लग रही थी। उसके दाहिने हाथ की उंगली में शादी की अंगूठी जगमगा रही थी। इससे ये तो तय था कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल तो जरूर रही होगी। वो जैकेट पहने हुए थी। उसके कपड़े सादा और कम कीमती नजर आ रहे थे। उसने दुकानदार को एक पर्ची पर लिखी हुई चीजों के नाम धीमी आवाज में बताने शुरू किए। उसकी आवाज और बताने के अंदाज में शर्मीलापन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो दुकानदार को अपना सबक सुना रही हो।
आप कहें तो मैं ये सारा सामान आपके घर पहुंचवा दूं, दुकानदार ने प्रस्ताव रखा। सामान ज्यादा है और आप अकेले के लिए इसे उठाना।
नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं इसे उठा लूंगी, लड़की ने दुकानदार की बात काटते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की दुकान से बाहर निकली तो उसके दोनों हाथों में बहुत सारे पैकेट थे। वो राहगीर अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था जो कुछ देर पहले उसे देखते हुए उधर से गुजरा था। वो कुछ दूर जाकर एक न्यूज स्टैंड से अखबार खरीद रहा था। फिर वो बहुत सुस्त रफ्तार से अखबार की हेडलाइंस पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कुछ देर बाद वो लड़की उसके करीब से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। देखने की कोई वजह भी नहीं थी। वो राहगीर अखबार की हेडलाइंस देखने में बिजी था। लड़की सर झुकाए अपने ख्यालों में मस्त चली जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की एक बेकरी में दाखिल हो गई। राहगीर भी उसी सुस्त रफ्तार से बेकरी की तरफ बढ़ रहा था। इस बार फिर उसने बेकरी के करीब से गुजरते हुए अंदर देखा। लड़की के दोनों हाथ खाली थे। उसके तमाम पैकेट काउंटर पर रखे हुए थे। वो दुकानदार से रेजदारी लेकर अपने पर्स में रख रही थी। वो राहगीर आगे बढ़कर एक दुकान के शोकेस में सजी शर्ट देखने लगा। लड़की एक मर्तबा फिर उसके करीब से गुजरी। उसके पैकेटों में अब बढ़ोतरी हो गई थी। लड़की दुकान के करीब से गुजरने लगी तो शोकेस के शीशे में उसका अक्स उभर आया। राहगीर की पीठ लड़की की तरफ थी। वो शीशे में लड़की का अक्स ध्यान से देखने लगा। लड़की ने कनखियों से उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक बार, बस कुछ पल के लिए। फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके आगे बढ़ गई। अब उसकी आंखों के प्रभाव बदल गए थे। अब वो जरा चौकन्ना हो गई थी। चंद कदम चलने के बाद वो अचानक ही रुक गई। शायद कोई सामान खरीदना भूल गई थी। वो वापस पलटी। राहगीर के करीब से दोबारा गुजरते वक्त उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। चलते चलते वो एक बड़ी इमारत के करीब पहुंची और उसके बगल वाली गली में चली गई और निगाहों से ओझल हो गई। ठीक उसी वक्त न जाने कहां से एक और आदमी वहां पर आया। उसने सिलेटी रंग का हैट पहन रखा था। वो अखबार पढ़ रहे आदमी के करीब पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। अखबार पढ़ रहे उस राहगीर ने उस हैट पहने आदमी की तरफ देखते हुए आंखों से गली की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही हैट वाला आदमी तेजी से उसी तरफ चल दिया जिधर लड़की गई थी। अखबार वाला राहगीर भी अब तेज रफ्तार से चल रहा था, मगर वो उस गली में दाखिल नहीं हुआ जिसमें हैट वाला आदमी लड़की के पीछे गया था। अखबार वाला आदमी अगली गली में मुड़ गया। ये गली पहली वाली गली के बराबर ही थी। सिलेटी हैट वाला आदमी गली में दाखिल हुआ तो गली सुनसान पड़ी थी।
लड़की का दूर दूर तक पता नहीं था। अचानक उसकी नजर एक पैकेट पर पड़ी जो बगल वाली गली के नुक्कड़ पर पड़ा हुआ था। पैकेट खुल गया था और डबल रोटी सड़क पर बिखरी पड़ी थी। हैट वाले आदमी की नज़र जैसे ही उस पैकेट पर पड़ी, उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और खुद भी बगल वाली गली में मुड़ गया। ये गली भी दूर तक सुनसान पड़ी थी। सीधे हाथ की तरफ कई दूसरे रास्ते निकल रहे थे। वो कुछ और आगे बढ़ा तो उसने एक दूसरा पैकेट जमीन पर पड़ा देखा। अब हैट वाला आदमी, वो आदमी दौड़ने लगा। गली के आखिरी सिरे पर उसे एक और बड़ा सा पैकेट पड़ा हुआ नजर आया। उस पैकेट में से दो खूबसूरत डिब्बे निकलकर इधर उधर लुढ़क गए थे। दूसरी तरफ खड़े हुए दो बच्चे डिब्बे उठाने के लिए आ रहे थे। गली के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही हैट वाले आदमी की दस्ताने वाले पहले आदमी से मुलाकात हो गई। वो दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ यहाँ तक आया था। दोनों की नज़रें मिली। इसके बाद वो दोनों चारों तरफ देखने लगे। उन्हें एक ही दिशा नज़र आई जिसमें लड़की भाग कर जा सकती थी। दोनों ने एक साथ उसी दिशा में दौड़ लगा दी। इस बार वो पूरे जोर से दौड़ रहे थे। इस गली के ख़त्म होने पर वो बाईं तरफ की गली में मुड़ गए। कुछ आगे एक दूसरी गली में वो लड़की नज़र आ गई। उसके हाथ अब बिल्कुल खाली थे। वो पूरी तरह से दौड़ती चली जा रही थी। हैरत में डालने वाली बात ये थी कि वो ऊंची हील के शूज़ पहने हुए थी। इसके बावजूद उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। दौड़ते दौड़ते दस्ताना पहने शख्स और हैट वाले दोनों की ही सांस फूल गई थी। वो एक दूसरी गली में मुड़ गए। इसी के बगल वाली गली में लड़की तेजी से भागती चली जा रही थी। उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि उसकी जैकेट और स्कर्ट हवा में उड़ रहे थे। फिर एक इमारत के करीब पहुंचकर वो लड़की अचानक नजरों से ओझल हो गई। उसका पीछा कर रहे दोनों आदमियों को उस गली में पहुंचने में कुछ देर हो गई। यही वजह रही कि वो उस लड़की को इमारत में दाखिल होते हुए नहीं देख सके और दौड़ते हुए उससे आगे निकल गए। वो दोनों गली के सिरे पर पहुंचकर मुड़ने ही वाले थे कि एक बूढ़े ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक लिया और धीमे लहजे में उसे कुछ बताने लगा। इसके बाद बूढ़े ने उस इमारत की तरफ उंगली से इशारा किया जिसमें वो लड़की गई थी। कुछ देर बाद वो तीनों अलग हो गए। हैट वाला आदमी हैट नीचे खिसकाकर उसी जगह पर खड़ा हो गया। दूसरा वाला तेजी से टेलीफोन बूथ की तरफ चला गया। बूढ़ा दूसरी तरफ चला गया। वो लड़की उस इमारत की दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। वो बुरी तरह हांफ रही थी। वो दरवाजे से कुछ इस तरह टेक लगाए हुए थी जैसे उसकी टांगों में जान ही न बची हो। उसने एक बार सर मोड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बड़ी खामोशी से खुलता चला गया। वो लड़की किसी साये की तरह अंदर चली गई। ये एक बड़ा सा कमरा था। उसमें हल्के रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे में नीली कमीज पहने हुए एक मर्द बैठा था। वो रिवॉल्वर की नाल साफ कर रहा था। लड़की के अंदर आते ही उसने अपना काम बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके उसमें चैन लगा दी। लड़की एक कुर्सी का सहारा लिए खड़ी थी। उसने गहरे गहरे सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा, पुलिस, डार्लिंग, पुलिस, सादा लिबास में, आज वो मुझे पकड़ ही लेते हैं। मर्द ने मोहब्बत भरी निगाहों से लड़की की तरफ देखा और उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाने लगा, लेकिन लड़की उसकी बाहों में झूल गई। उस आदमी ने लड़की के गालों को थपथपाते हुए नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम उन्हें पीछे लगाकर यहां ले आई? इसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर कमरे का बल्ब बुझा दिया। लड़की उसकी बाहों से अलग हो गई। उस आदमी ने फिक्र भरी नजरों से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर मोटे पर्दे पड़े हुए थे। मर्द सीधे खिड़की की तरफ जाने के बजाय दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो जल्दी ही खिड़की के करीब पहुंच गया। दो पर्दों के बीच की झिरी से उसने बाहर की तरफ झांका। गली के बल्ब की रोशनी कमरे की एक दीवार पर पड़ रही थी। उसने ना तो पर्दों को छुआ और ना ही अपना चेहरा उनके इतना करीब ले गया कि उसकी सांसों से उनमें जरा भी हरकत हो। उस आदमी का नाम चैंपलेन था। वो पीछे की तरफ से देखने पर एकदम बच्चा नजर आ रहा था। वो दुबला पतला इकहरे जिस्म का छोटे कद का आदमी था। उसमें बिल्लियों जैसी खामोशी और चीतों जैसी फुर्ती थी। पिछले चंद हफ्तों से पूरे अमेरिका की पुलिस उसकी तलाश में थी। डार्लिंग, मैं उन्हें धोखा देने में कामयाब हो गई, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मुझे दौड़ लगानी पड़ी। अगर मैं दौड़ न लगाती तो वो जरूर मुझे पकड़ लेते। मैंने उन्हें भटका दिया। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिएगा था रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे कोजंक बोगरिश की लिखी कहानी एनकाउंटर। आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।